वैदिक भाषा कितनी प्राचीन है ये कहना कठिन है। अलग अलग लोगों ने मत दिए हैं और वो मत 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के या 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के भारतीय विद्वानों के द्वारा तो लगभग 3000 ईस्वी पूर्व का मत जो है विशेष रूप से मान्य है, उससे लेकर के और जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनका मत 2000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व, 1200 ईस्वी पूर्व, ये लगभग उनके मत ठहरते हैं। जिनमें कि जो प्राचीनतम हमारी वेद की पुस्तक है ऋग्वेद, उसके संबंध में है, और बाद में यजुर्वेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि सामवेद की सारी ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं, और फिर अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सूत्र ग्रंथ हैं, ये सब ब्राह्मण आरण्यक सूत्र ग्रंथ, इन सब का काल बाद में होता है। मेरा अपना विचार ऐसा है कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व का काल वेद की रचना के लिए बहुत ही उपयुक्त समय हो सकता है। इसका कारण ये है कि लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब महावीर और बुद्ध हमारे देश में थे और बिहार में वो पाली में या अर्धमागधी में अपने अपने विचारों का, अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो उस समय संस्कृत संभवतः जन सामान्य की बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी, अन्यथा वो अपना प्रचार उस भाषा में करते। हमको कम से कम 200-300-400 साल पहले जाना पड़ेगा जब हम माने कि अब उस समय संस्कृत संभवतः संपूर्ण उत्तर भारत में बोलचाल की भाषा थी। यदि हम 8वीं शताब्दी तक आ जाते हैं, जब हम संस्कृत का एक प्रकार से काल मान लेते हैं कि वो उस समय तक बोलचाल की भाषा रही होगी, वो लौकिक संस्कृत का काल, और लगभग वही समय ऐसा रहा होगा जबकि आपके कुछ प्राचीनतम हमारे रामायण और महाभारत के जो एपिक्स हैं वो रूप लिखे गए होंगे, जिसमें कि बाद में और वृद्धि होती रही, सुधार होता रहा और काफ़ी आगे तक वो कई सौ वर्षों तक लिखे जाते रहे, महाभारत तो विशेष रूप से। तो मैं समझता हूँ कि 8वीं शताब्दी से लेकर के ईस्वी पूर्व से लेकर के और 3000 ईस्वी पूर्व तक का जो लगभग 2200 वर्षों का काल है वो आप वैदिक साहित्य के लिए दे सकते हैं, क्योंकि वैदिक वाङ्मय बहुत बहुत विस्तृत है। और हमारा अपना पारंपरिक मत भी ऐसा है कि कलयुग के प्रारंभ है और कलयुग का प्रारंभ हम लोग 3000 ईसा पूर्व लगभग मानते हैं, क्योंकि अब 5000 कुछ चल रहा है। तो उस समय कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने अनेक परिवारों में ये मंत्र मौखिक रूप से उपलब्ध थे और जा करके उसको एकत्र किया जिससे कि वो लुप्त न हो जाएं, और विशेष रूप से द्वितीय मंडल से लेकर के ऋग्वेद के और अष्टम मंडल के मंत्रों को उन्होंने विभिन्न परिवारों से, उनके पुत्रों से, पौत्रों से जा करके एकत्र किया और उसको फिर एक कलेक्शन का नाम दिया, जिसे संहिता का नाम दिया, ऋग्वेद संहिता। और उसके पश्चात उस ऋग्वेद का भी एक प्रकार से पूर्णतया उस रूप में नहीं रहा जिस रूप में वो बोला जाता था, उसका एक प्रकार से जिस प्रकार से हम संशोधन करते हैं या आलोचना करते हुए हम लोग उसका एक आलोचनात्मक संस्करण तैयार करते हैं, उसी प्रकार का एक थोड़ा सा आलोचनात्मक संस्करण उस तरह की एक कुछ प्रक्रिया ऋग्वेद के संबंध में भी हुई। क्योंकि यदि ऋग्वेद के मंत्रों को हम देखें और मंत्रों के छंदों को देखें तो बहुत सारी उसमें ऐसी संधियां हमको मिलती हैं, यदि हम उन संधियों के साथ में ऋग्वेद का मंत्र पढ़ें तो वो छंद गड़बड़ हो जाता है। ऋग्वेद के 7 छंद मुख्य हैं और उन छंदों के कुछ नियम हैं, तो अगर आप जिस रूप में ऋग्वेद छपा हुआ हमारे पास में है उस रूप में आप पढ़ते हैं तो कई स्थानों पर आपको छंद गड़बड़ मिलता है। उदाहरण के लिए जिसे हम यण संधि कहते हैं पाणिनि में, ई और आ मिलकर के या हो जाता है और ऊ और आ मिलकर के वा हो जाता है आदि, तो वो संधियाँ आपको प्रायः ऋग्वेद में नहीं मिलती हैं। विष्णोर्नुकम वीर्याण प्रवोचम जब हम कहते हैं तो यहाँ पर हम केवल 10 अक्षर पाते हैं, जबकि ये जो छंद है ये त्रिष्टुप छंद है, यहाँ 11 अक्षर होने चाहिए। अर्थात इसका उच्चारण हमको करना चाहिए विष्णोर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम वीर्याणि, यहाँ पे वीर्याणि के स्थान पर वीर्याणि बोलना चाहिए आपको, तभी वो 11 अक्षर मिलेंगे। तो लगता है कि इसमें ऋग्वेद का को एडिशन बनाने में, उसको एडिट करने में, उसका संपादन करने की दृष्टि से भी काम हुआ, और वो संपादन तब हुआ होगा जब वस्तुतः प्रातिशाख्यों का निर्माण प्रारंभ हो गया होगा। मैं ये नहीं कहता कि पाणिनि के व्याकरण को देख करके उसका संपादन किया गया, ये तो नहीं है, लेकिन जिस समय जब एक बार ऋग्वेद का की संहिता बन गई, उसका कलेक्शन हो गया, तो उसके पश्चात उस भाषा के व्याकरण की तरफ ध्यान दिया गया, उसका व्याकरण बनाया गया और उसको फिर व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतया और एक परिष्कृत करना तो खैर गलत होगा, लेकिन उसको पूर्णतया उस उन व्याकरण के नियमों के अनुसार निबद्ध किया गया। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो सारे व्याकरण के नियमों का पालन उसकी भाषा नहीं करती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि लगभग ये समय जो हम लोग अंदर जो उसके ज्योतिष संबंधी प्रमाण हैं उनसे भी लगभग ये समय तय होता है। शतपथ ब्राह्मण में कृत्तिका में वर्ष का प्रारंभ कृत्तिका से होने का उल्लेख है और आज वो नक्षत्र पीछे चले गए हैं, तो अगर उसकी आप गणना करते हैं तो उस गणना से भी आपको शतपथ ब्राह्मण का काल लगभग 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1100 ईस्वी पूर्व तक आता है। तो ये जब ये तो बहुत बाद इस शतपथ ब्राह्मण की भाषा बहुत बाद की है, गद्य की है, और उसके बहुत पहले आपको अब इन संहिताओं का काल मानना पड़ेगा। ये संहिताएं आप सबको पता है कि शायद लिखित रूप में पहले नहीं थी। मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि कोई न किसी न किसी प्रकार से कोई लिखित रूप में इनको सुरक्षित रखा गया होगा, क्योंकि महर्षि व्यास या जो भी हैं इतने सारे लोगों के इतने सारे परिवारों के बीच में घूमे और घूम करके कितने कितने दिनों तक या कितने महीनों तक या वर्षों तक एक एक परिवार में रहे होंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा मंडल ही एक परिवार के मंत्रों से भरा हुआ है, तो उनको याद करना और सस्वर याद करना उसके लिए बहुत दिन तक उनको उस परिवार में रहना पड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई लेखन कला थी जिसके संबंध में आज हम नहीं जानते। यद्यपि वेद को श्रुति कहा जाता है और वो श्रुति इसलिए बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो केवल मौखिक परंपरा से ही जीवित था, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि किसी न किसी रूप में वो कोई न कोई लिपि विद्यमान थी जिसका कि आज हमको कोई भी संकेत नहीं मिलता, क्योंकि आज जो लिपि हम जानते हैं वो अशोक काल से प्रारंभ होती है, जिसे ब्राह्मी कहते हैं, और वो ब्राह्मी 250 ईस्वी पूर्व से हमको प्राप्त होती है। उसके पूर्व की जो लिपि है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता या सरस्वती घाटी की सभ्यता, सैंधव सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और मुझे नहीं लगता कि उसमें वेद लिखा गया होगा। उसके कई कारण हैं जिस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी लिपि ये ब्राह्मी लिपि किसी वैयाकरण की बनाई हुई नहीं है। जैसे आप इसको देखेंगे, इसका प्रारंभिक रूप ये बड़ी अच्छी लिपि है, लेकिन संभवतः संस्कृत लिखने के लिए इसका आविष्कार नहीं हुआ था, प्राकृत लिखने के लिए इसका आविष्कार हुआ होगा। सब अलग 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 वर्ण, कभी आपको इसमें सम्मिलित वर्ण नहीं मिलेंगे। हमारे एक शिष्य हैं, उनका भी ये कहना है कि गुरुजी प्राकृत के लिए यह वर्णमाला बनाई गई, संस्कृत के लिए अगर बनती तो इसमें ये अक्षर एक में एक जो मिलाते हैं, फिर ऊपर लगाए, फिर नीचे लगाए, फिर ये किया वो किया, वो सब उसमें नहीं होता, फिर वो दूसरी प्रकार की होती। और ये है भी कुछ इस प्रकार की कि इसमें कोई क्रम नहीं है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि एक का और खा में परस्पर कोई साम्य हो, गा और घा में कोई साम्य हो, किसी वैयाकरण की बनाई हुई नहीं है। व्यापारियों से कुछ संकेत लिए गए, कुछ संकेत और जोड़े गए, और इस प्रकार से उस लिपि को पूर्ण किया गया अशोक के समय में, और उससे फिर आपकी भारत की समस्त लिपियाँ, भारत की ही नहीं श्रीलंका की, बर्मा की, थाईलैंड की, इंडोनेशिया की, तिब्बत की सारी लिपियाँ उसी से विकसित हुई। बहुत ही जिसे कहते हैं प्रोडक्टिव लिपि वो रही। लेकिन इसमें वेद कब लिखे गए ये हम नहीं जानते हैं। संभवतः बाद में जब इस संस्कृत के लिए प्रयुक्त की जाने लगी, शुरू में तो आपको पता होगा कि सारे के सारे जो अभिलेख हैं हमारे, सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, वो 400 साल तक तो केवल प्राकृत में मिलते हैं। केवल एक अपवाद को छोड़ करके जो रुद्रदामन का है वो ही संस्कृत में है, नहीं तो सारे के सारे आपके अभिलेख प्राकृत में है। प्राकृत के लिए ही प्रयुक्त की जाती रही ये लिपि, तो इसलिए इसमें ऋग्वेद कब लिखा गया हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऋग्वेद की बाद में भी पांडुलिपियाँ रहीं, लोग उसे याद करते रहे वो ठीक है, और गुरु से याद करते रहे, लेकिन उनकी जो एक पुस्तकाकार भी वो रही। अन्यथा यास्क जब उल्लेख करते हैं या पाणिनि उल्लेख करते हैं ग्रंथों का, उसका उल्लेख करते हैं, उसका मंडल का उल्लेख करते हैं, सूक्त का उल्लेख करते हैं, कितनी ऋचाएँ हैं इसका उल्लेख करते हैं, बृहद देवता उल्लेख करता है, वो सब एक उनके सामने एक चाक्षुष रूप रहना चाहिए ग्रंथ का। वो केवल कल्पना से या केवल अपनी स्मृति से वो उसको उद्धृत नहीं कर रहे हैं।